राधे
जगद्गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस।
छिप के क्यों आते हैं, हमें बताते क्यों नहीं? जब भगवान आते हैं और मनुष्य रूप में आते हैं, यानी छिप के आते हैं, तब तो हमारा ये हाल है कि हम उसमें इतनी नुक्ताचीनी निकालते हैं, ये भी मानने को तैयार नहीं होते कि ये महापुरुष भी हैं। अगर कोई भी महापुरुष आए या भगवान उतर के आए और कहने मैं भगवान हूँ, तब तो कहे आपसे ऐसे भगवान बहुत देखे हैं, प्रणाम आपको। क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं वो भगवान के रूप में, संत के रूप में, राजा के रूप में, बहुत तरह से अवतार लेते हैं। तो जब ये अवतार लेकर आते हैं तो अपने को छिपाते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वे जब अवतार लेकर आते हैं तो उनका एक सिद्धांत होता है कि जहां तक हो सके हम लोग को सिखाते हैं वो कि अगर तुम्हारे पास प्रेम है भगवान का तो जहां तक हो सके उसे छिपाओ, जितना हो सके छुपाओ। क्यों छुपाओ? उसका एक सिद्धांत है, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, हर तरह से सर्वदा छिपाओ अपने प्रेम। क्योंकि जैसे अगर हम लोगों को कोई बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, लॉटरी खुल जाए, या कहीं से भी बहुत बड़ी कोई अर्निंग हमारी हो जाए, तो हम किसी को बताते नहीं, छिपाते। यूं तो लोग कहते हैं, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं दीदी हमने लिया है लॉटरी का टिकट, बस ये निकल जाए, ऐसी कृपा करिए कि मुझे ये लॉटरी मिल जाए, फिर हम तो बढ़िया सा बड़ा सा मंदिर बनवा देंगे अकेले ही आपका, बहुत यहाँ बढ़िया आश्रम बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। अच्छा भैया, अच्छा उसके बाद बाय द वे अगर किसी की लॉटरी निकल आई तो बताते ही नहीं आके कि हमारी लॉटरी में निकली हुई है, पता तो चल जाता है उनके व्यवहार से, उनके खर्च करने के ढंग से या किसी भी उनके खास लोगों के माध्यम से। लेकिन अगर हम बताएं भी कि हमको तो पता चला कि मैं लॉटरी, अरे नहीं दीदी हमारे को लॉटरी वॉटरी नहीं खोली, बताते नहीं डर के मारे कि देना पड़ जाएगा कुछ भी। तो हम संसार में तुच्छ धन की प्राप्ति होती है, जो आज है कल नहीं रहेगा, सबको पता है। चाहे कितना बड़ा अमाउंट भी क्यों ना मिल जाए, कितने मिलियन या बिलियन की लॉटरी खुल जाए, तो दो बातें होती हैं। एक तो हमारी लालसा खत्म नहीं होती और लालच पड़ जाता है और पाने का, उस चक्कर में हम वो भी गवा बैठते हैं, और पाने के लालच में जो मिला है उसे भी हम गवा बैठते हैं, खो देते हैं उसको भी। और दूसरे ये कि हम ना भी उसको कहीं और लगाएं, ना भी चिंता करें उसकी, तो भी वो तो खत्म हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो खत्म होगा ही, वो धन तो भी हमारे उसमें बहुत ज्यादा उसको हम छुपाते हैं और उसमें हमारी आसक्ति भी बहुत होती है। तो जिसको प्रेम धन मिल जाए, जिसके आगे कोई धन ही नहीं है, ये धन सबसे बड़ा इसलिए है कि यही वो धन है जिसके अंदर में भगवान भी रहते हैं। और कोई कितना ही बड़ा धनी हो जाए, भगवान तो उससे और दूर होते जाते हैं। जितना जितना संसार का धन हमारे पास बढ़ता जाता है, उतना अपना भगवान उससे दूर होते जाते हैं, पास नहीं आते, क्योंकि धन बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है। और भगवान का एक ही विरोधी तत्व है अहंकार। अहंकार चाहे कोई भी हो, उसका अहंकार नहीं सहन करते हो तो वो दूर होते जाते हैं, जिसके पास धन अधिक आता है। लेकिन जिसके पास प्रेम धन बढ़ने लगता है, भगवान उसकी उतनी गुलामी करने लग जाती है, उसके दास बन जाते हैं। वो जो चाहे ऐसा धन हमको मिल जाता है, बड़ा भारी धन। जब उतना बड़ा धन मिल गया तो भला कौन बताएगा किसी को। और फिर प्रेम धन एक ऐसा धन है कि गुहितस्य भवेत् वृद्धि, जितना उसको छिपाओगे वो उतना बढ़ता है। और कीत तस्य भवेत् क्षयः, और जितना हम उसको बताएंगे लोगों को तो उतना ही उसमें कमी आती जाती है, खत्म होता जाता है। जितना हम बोलते जाएंगे उतना खत्म होता जाएगा। इसलिए वो हमें सिखाते भी हैं कि हमें किसी को बताना नहीं है, अपना छिपाना है। छिपाओ छिपाओ छिपाओ। और जब वो नहीं बताते कि हम भगवान हैं, भगवान आते हैं यहाँ पर अनेक रूपों में, और नहीं बताते कि हम भगवान हैं, तो उनके गुणों को देखकर अट्रैक्ट होकर हम उनसे कुछ सीख लेते हैं और हमारा स्वयं का ये विश्वास बढ़ने लग जाता है कि ये भगवान है। अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि हम भगवान हैं, तो हमारा जो रहा सहा विश्वास है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार दिखाई देंगे ना, हमें उन्हें कोई उनके अंदर कोई भगवती गुण तो दिखाई देंगे ही नहीं। जो आते हैं भगवान महापुरुष के रूप में या किसी भी रूप में, तो हमें गुण में कुछ नहीं दिखाई देते। आप लोग सब जानते हैं कि जब सीता स्वयंवर हुआ या जब धनुष यज्ञ हुआ तो श्री कृष्ण वहां पर आए, सबने देखा उनको वहां पर, लेकिन सबने अलग अलग देखा। दुष्यंत प्रभु विराट वय दिशा, जो विरोधी थे शत्रु थे उनको लगा रहे इतना विराट रूप है इसका। पहलवानों ने उनका हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अभी उंगली का ही टच किया था, अरे इसका तो सारा शरीर वज्र का बना हुआ है, हम तो समझ रहे थे बड़ा कोमल सा छोटा सा बच्चा है ये श्री कृष्ण, अरे तो उनको पूरा वज्र का बना हुआ है। सखाओं ने देखा उसने, वो इतना डर गए बेचारे प्रेम के वशीभूत होकर, अरे ये तो हमसे भी हार जाता है कुश्ती में, कहाँ पहलवान से लड़ने चला गया, हमारी भी नाक कटाएगा, वो ऐसे सोच रहे हैं। और जो गोपियां थी श्री कृष्ण को प्रियतम मान के प्यार करती थी, तो उनको लगा कि इनसे भी बढ़कर कोई सुंदर हो सकता है क्या। लोग कहते हैं कामदेव सबसे सुंदर है, लेकिन कामदेव इतना सुंदर कैसे हो सकता है जितने सुंदर ये हैं। कंस को बिल्कुल साक्षात यमराज जैसे दिखाई दिए, भय लगा उनको, यानी जिसकी जैसी भावना थी जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखा, किसी के कहने से कभी किसी को विश्वास हुआ ही नहीं कि ये भगवान है। विश्वास तो तब होना जब भगवान वाले गुण दिखाई दे हमें। हमें अपनी बुद्धि का ही अक्स दिखाई देता है दूसरे में, जो जैसा होता है उसको दूसरे लोग वैसे ही दिखाई देते। एक बार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो ढूंढ के लाओ, जो सबसे बढ़िया व्यक्ति हो उसको लाओ ढूंढ के। दुर्योधन ढूंढते रहे दो तीन दिन तक सब जगह, लौट आए बोले हमें तो कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, मुझसे वैदिक दोष में सब में जिसमें देखा उसमें दिखाई दिए, मुझे कोई अच्छा भी नहीं दिखाई दिया। लौट आए पैर, फिर युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर तुम जाओ और जो सबसे बुरा व्यक्ति है वो ढूंढ के लाओ, सबसे खराब व्यक्ति जो वो ढूंढ के लाओ। वो भी दो तीन दिन तक ढूंढते रहे, वापिस आ गए, बोले मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। जिसको भी मैंने सोचा कि शायद ये थोड़ा बुरा है, तो उसमें मुझे उससे ज्यादा दोष मुझे अपने में दिखाई दिया, तो मैं कैसे कह दूं कि वो बुरा है, मुझे कोई बुरा दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने बताया कि देखो जो अच्छा है उसे सब अच्छा ही अच्छा दिखाई दे, उसके लिए बुरा ढूंढना मुश्किल है, और जो बुरा है उसे सब बुरा ही बुरा दिखाई देता है, उसके लिए अच्छा ढूंढना मुश्किल है। तो जब जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होता है वो उतनी जल्दी भगवान को पहचान लेता है और उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एक चुंबक है, मैग्नेट, उसके चारों ओर आप कुछ लोहे की सुइयां रख दीजिए, जिसमें प्योर लोहा है वो झट खिंच जाएगी चुंबक की ओर, और जिसमें मिलावट है वो धीरे धीरे कम अट्रैक्ट होगी उधर की ओर। तो अपने आप जिनके जैसे संस्कार हैं वो उस प्रकार से भगवान को पहचानते हैं, लेकिन जिनके संस्कार अच्छे नहीं भी हैं उनके कल्याण के लिए भगवान धरती पर अवतार लेकर आते हैं। मेन रीजन उनका यही है कि जिनका हृदय गंदा है, जो मुझे नहीं पा सकते, तो उनके लिए मनुष्य शरीर धर कर आते हैं यहाँ पर और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं के द्वारा हमें अनेक तरह के लेसन्स देते हैं, अनेक तरह का ज्ञान देते हैं, बताते हैं हमको, बहुत कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे एक भगवान श्री कृष्ण लीला की गोवर्धन उठाने की, तो उन्होंने हमें कितनी बड़ी फिलॉसफी दी कि हमको अनन्य बनना है, भगवान की उपासना करना है। ये देवी देवताओं की उपासना करने से कुछ नहीं होगा, ये तो तुमको देवी देवताओं तो स्वर्ग तक ही उनकी भी पहुंच है, तो इसके आगे तुम्हें कैसे ले जाएंगे, वो भी तुम्हें स्वर्ग तक ही पहुंचा के खत्म। और स्वर्ग में जो रहते हैं वो कोई परमानेंट प्लेस तो है नहीं सर्ववासियों के लिए, जब तक उनके पुण्य होते हैं तब तक वो पुण्यों का भोग करते हैं और उसके बाद में आ जाते हैं वही 84 लाख में चक्कर लगाने के लिए घूमते हैं। जिसके पास जो है वही तो देगा, उसके आगे तो वो कुछ नहीं दे सकता। आपने इंद्र की उपासना की तो इंद्र बहुत 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 कुछ आपको दे देगा, तो चलो उस स्वर्ग का सम्राट बना देगा तुम्हें, इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या इंद्र ही अपनी सीट के ऊपर परमानेंट है? नहीं, उनके भी जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे वो 84 लाख में घूमेंगे। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं हम लोग करोड़ों बार इंद्र बन चुके हैं। ये सुन के अब हमें विश्वास नहीं होता, एक कुत्ता है उससे कहो कि तुम पिछले जन्म में इंद्र थे तो क्या कहे अब मैं कुत्ता बना हूं और रोटी के लिए पिटाई हो रही मेरी जगह जगह, विश्वास ही नहीं होगा। वही हाल हम सभी का ही है कि अब जिस स्थिति में हम हैं, कोई हमसे कहे कि तुम इंद्र बन चुके हो तो हमें विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारी यही स्थिति है, हम घूम रहे हैं। महापुरुष आते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, और जैसा युग है उसके अनुसार ही भगवान अवतार लेकर आते हैं। अब कलयुग में लोग इंग्लिश जानने वाले हैं, उनकी नॉलेज इतनी नहीं है, वो शास्त्र वेदों को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो पढ़ सकते नहीं, संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनको कुछ आता नहीं अब संस्कृत भाषा, और वो खत्म ही हुई, जिसे पीरी हो गई, विलुप्त हो गई है, तो लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। तो अब जो महापुरुष आते हैं तो हमें हिंदी में इंग्लिश में ग्रंथ दे रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में हमें समझा रहे हैं, ऐसी हमारी लैंग्वेज है, और हमारे लेवल पे उतर के हमें समझा रहे हैं। वो सातवें आसमान की बात नहीं करते, सीधे वेदों की फिलॉसफी हमारे सामने नहीं रखते, उसको सरलतम बना के, हमारे स्टैंडर्ड का बना के बच्चों की भाषा में हमें समझाते, बार बार समझाते, महाराज जी की जो फिलॉसफी है उसका एसेंस यही है कि हमें श्री राधा कृष्ण से प्रेम करना है, और वो प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने सुख की गंध भी ना हो, अपने सुख की वासना की गंध भी ना हो, इतना निष्काम प्रेम में भगवान से करना है। तो वो महाराज जी फिलॉसफी अपने हर कीर्तन में हर भजन में देते हैं, बार बार रिपीट करते हैं हमारे सामने, हम समझ जाएं। और जो उनकी भी सेवा करते हैं महाराज जी की, उनको भी वो सिखाते हैं निष्काम सेवा करो। तुम्हें किस तरह निष्काम सेवा करनी है? सेवा करना तो हम गुरु के ही माध्यम से सीखेंगे ना। तो जब वो गुरु रूप में अवतार लेते हैं, महापुरुष बन के अवतार लेते हैं, किस लिए? हमें सिखाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके गुणों से धीरे धीरे अपने आप पता चलने लगता है कि वे कौन हैं। किंतु वे अगर खुद कहें कि हम भगवान हैं, उन्हें कौन मानेगा? अर्जुन जिसको इतना बड़ा ज्ञान दिया और इतने बड़े मिरेकल्स दिखाए उसी महाभारत के क्षेत्र में, तो भी वो कहता है कि हमें विश्वास नहीं होता कि आप भगवान हैं। आपने बताया कि आप साक्षात भगवान हैं, हमें अपना रूप दिखाइए, भगवान वाला रूप दिखाइए, तब हमें विश्वास होगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है। तो नरपामर क्या केतिक बात है, हम लोग की तो बात ही क्या है, हमारे संग में कैसे आ जाएगा? तो भगवान ने अपना दिखाया रूप, भगवान वाला रूप, क्योंकि एक एक रूप से अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अपने अपने लोगों को लेकर लटके हुए, घबरा गया, घबरा कर प्रार्थना करने लगा, प्रसीद देवेश जगन निवास दर्शाकरानी, इतना बड़ा जो बड़े बड़े दादा को इतना भारी भयंकर रूप वाला दिखाई दे रहा है, ये सब देख के डर लग रहा है मुझे, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, अपने रूप में आ जाओ। भगवान ने कहा मैं कब अप्रसन्न था, मुझे कौन गुस्सा था, तुम्हें तो कहा रूप दिखाओ, अब देखो नहीं तो बड़ा भयंकर रूप में, मेरे सखा रूप में आ जाओ, ये चार भुजा हजारों भुजा वाला ये सब तो बड़ा डराना रूप है। तो भगवान फिर अपने रूप में आए। तो हमें भगवान अगर कहें कि हम भगवान हैं तो हम विश्वास कब करेंगे? अभी देखा जाए तो डायरेक्ट तो नहीं, किंतु इनडायरेक्ट बहुत कुछ हम लोग को पता है कि श्री महाराज जी कौन है। हमारा कहाँ विश्वास है? हमारा फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज जी कौन है। और विश्वास अगर हो जाए किसी क्षण किसी भी व्यक्ति का, तो इमीजिएटली भगवत प्राप्ति हो जाए। देरी क्या भगवत प्राप्ति में, ये विश्वास, यही एक देरी है विश्वास की कमी। हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम कहते हैं और समझते हैं कि हम महाराज जी के बड़े शरणागत हैं, हम महाराज जी के बड़े खास हैं, हम महाराज जी को बहुत समझते हैं। अरे उनको ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ सकते, हम लोग क्या किस खेल की मुंगी जब उनको समझ लेंगे? हम उनको कुछ नहीं समझते, केवल हमारा दम्भ है, या बहुत कुछ जानते हैं, बड़े शरणागत हैं, नहीं हो पा रहे हैं। जानते हैं भी, थेरी में सब पता है, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो बहुत क्लोज एसोसिएशन में है महाराज जी की, वो क्या चीज है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, फिर भी विश्वास नहीं होता हमें। ये हमारे अंतःकरण की गंदगी के कारण, जैसे एक मिरर है, उसको उसमें मिट्टी जमी हुई है, तो तुम कुछ भी इसके सामने रख दो, मणि रख दो, कुछ रख दो, तो उसका रिफ्लेक्शन उसमें आएगा ही। बहुत ही सुचिंद राय मणिर नामिदार है, मणि है उसके सामने कोई चीज लाओ तुरंत उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ेगा। मिरर के ऊपर आपके धूल जमी हुई है, अब आप कितनी सुंदर वस्तु ला रहे हो, आपको उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, धूल ही दिखाई देगी। तो हम लोग के अंतकरण पे परतें की परतें जमी हुई है। अनंत जन्मों में हमने अनंत पाप कर डाले। ये बात हमको सुन के अच्छी नहीं लगती। कोई हमसे कहे कि आपने अनंत पाप किए हुए हैं, आप पास अनंत पाप हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन यूं सोचिए खाली कि अगर हमने एक जन्म में एक पाप भी किया होगा, सिर्फ एक पाप, जबकि हम लोग तो प्रतिक्षण पाप कर रहे हैं, लेकिन अगर एक जन्म में हम ये मानते हैं कि हमने बस एक पाप किया था, तो अनंत जन्म बीत गए, तो अनंत पाप तो है ही, हमारे हर हालत में स्वतः सिद्ध है कि हमने अनंत पाप किए हुए हैं। तो हमारे तो पाप के ढेर लगे हुए हैं अंतःकरण में, महाराज जी उसको धोने में लगे हुए हैं। हर अवतार काल में वो यही करते हैं, भगवान महापुरुष बनकर आते हैं और हमारे इस गंदगी को हटाते हैं। भगवान तो तब मिलेंगे आपको जब मन शुद्ध हो जाएगा, उसके पहले हमारा क्या होगा। अभी तो हमारा मन अशुद्ध है, तो हमारा उद्धार कौन करेगा फिर, महापुरुष करते। निर्मल मन जन सोए मोहि भावा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन, जो लोगों का मन शुद्ध है मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं उनको अपनाता हूँ। तो जो गंदे मन वाले वो कहाँ जाए, ये महापुरुष लोग कहते हैं हमारे पास आओ, और हमारे गंदे मन को वो शुद्ध करते हैं साधना करवा करवा के, करवा करवा के, साम दाम दंड भेद के द्वारा। कभी प्यार करते हैं, हृदय से लगाते हैं, कभी डांटते हैं, कभी दंड देते हैं, कभी कठोर दंड देते हैं, जो जैसा पात्र है और जिसका जैसा भी आवश्यकता है, अपराध है, उसके अनुसार वो सब तरह से हमें हमारा उद्धार करने में लगे हुए, दिन रात लगे हुए। हमने तो इतिहास में ऐसा उदार अभी तक कोई महापुरुष नहीं देखा पूरी हिस्ट्री में, जो कि जीव कल्याण के लिए इतना चिंतित रहता हो कि रात में 12:30 बजे से उठ जाए। एक बार मैंने फोन किया महाराज जी को, मैंने नीलू जी से पूछा है क्या हो रहा है, बोले यार 1:30 बजा हुआ है, महाराज जी नाश्ता कर रहे हैं। हमने कहा 1:30 बजे सुबह का नाश्ता हुआ है, बात तो पेपर में देने वाली, फिर खाना क्या बजे खाते हैं, बोलते 5 बजे खा लेते हैं, तो डिनर क्या बजे था, 12 बजे डिनर हो जाता। नहीं सभी कुछ क्यों, अगर वो 12:30 बजे ना उठे तो उनके जो अपने रूटीन का कार्य है तो वो देर से खत्म होगा, तो जीव कल्याण के लिए वो बाहर देर से आएंगे। तो हमें तो जल्दी से जल्दी बाहर निकल के हमारा कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता, नींद नहीं आती उनको, इतनी चिंता हमारे कल्याण की है उनको। 90 वर्ष की अवस्था में भी, और महाराज जी को इतनी बीमारी भी है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो परवाह ही नहीं करते उनके सामने। उनसे 30-30 साल छोटे लोग लाठी लेकर चलते हैं, कांपते हुए महाराज जी को पकड़ के पहुंचाते हैं कहीं वो जा रहे हैं। तो महाराज जी स्वयं 90 ईयर्स के हैं, लेकिन वो उनको अपने शरीर की कोई चिंता ही नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो महापुरुष लोग आते हैं, भगवान आते हैं यहाँ पर, महाप्रभु चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण के मिले अवतार, उन्हें क्या जरूरत थी साधना करने की, लेकिन वो अपने ही भक्तों में के चरणों में गिर गिर के रो रो के उसे प्रार्थना करते हैं, हमें श्याम सुंदर से मिला दो, हमें श्याम सुंदर से मिला दो। क्यों, हमें सिखाने के लिए, ऐसे ही तुम्हें तड़पना पड़ेगा श्याम सुंदर के लिए, तब तुम्हें श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। इसी तरह तुमको दीन बनना पड़ेगा, तब तुम्हारी साधना प्रारंभ होगी। इसी तरह तुमको आंसू बहाने पड़ेंगे, तब अंतःकरण की शुद्धि होगी। ये बातें सिखाने के लिए महाप्रभु चैतन्य दिन रात आंसू बहाते थे, अपने भक्तों के चरणों में लिपट कर कहते थे हमें श्याम सुंदर के दर्शन करा दो। तो हमें सिखाने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, वो बताए ना बताए से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ऊपर तो असर पड़ेगा ही नहीं उसका, हम मानेंगे नहीं कि वो भगवान है। उनके टाइम पर ही जो लोग थे भगवान के अवतार काल में,
किसने माना, कितने लोगों ने माना, जिसने माना उतर गए, जिन्होंने नहीं माना हम सब थे वहां पर। हम क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ना, आज ये शरीर छूटेगा हम फिर दूसरा शरीर लेके आ जाएंगे, वो छूट जाएगा फिर शरीर लेकर आ जाएंगे। हम तो हमेशा ही रहते हैं संसार में, जब भगवान ने उतार दिया तो भी हम थे, हमने उनको देखा भी। लफंगा गोपियों के पीछे भागता है, ये कह के हमने बात खत्म कर दी। तो जब भी महापुरुष आए हमने यही सब किया, इसीलिए आजकल हम 84 लाख में घूम रहे हैं। तो भगवान बता भी दें कि हम भगवान है तो उनको मानेगा कौन, इसलिए वो बताते नहीं, छिपाते हैं अपने आप को। और मनुष्य साधारण मनुष्य बनकर हमारे लेवल पर उतर कर हमें सिखाते हैं। जैसे एक बच्चा अगर गिर गया तो उसको उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, बच्चा अपने आप नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे ही महापुरुषों को, भगवान को हमारे लेवल पे उतर कर आना पड़ता है, तब वो हमें कुछ सिखा पाते हैं। आज कलयुग है और लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज भी होते जा रहे हैं, बहुत तरह के अट्रैक्शंस भी हैं संसार में बढ़ते जा रहे हैं, तो साधना में मन कम लगता है। लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो महाराज जी ने इतनी छूट दी कि तुम फिल्मी गाना पसंद, चलो फिल्मी गाना गाओ हमारे सामने, उनके सेवा के लिए गाओ, उनके सामने गाओ। तो लोग गाते हैं और जब वो महाराज जी के सामने फिल्मी सॉन्ग गाते हैं तो उनकी 100% भावना महाराज जी को केंद्रित करके या राधा कृष्ण को केंद्रित करके होती है। कई इसीलिए कई बार लोग कोई फिल्मी सॉन्ग भी गाते गाते रो पड़ते हैं, प्रेम में विभोर हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी भावना फिल्म वाली नहीं होती उस टाइम पर। ये महाराज जी के एसोसिएशन का प्रभाव, एक संत की भगवान की एसोसिएशन का प्रभाव होता है कि वो जो हमारी मटेरियल बुद्धि है वो उतनी गंदी नहीं रह जाती उनके सामने, उनके प्रभाव से निर्मल हो जाती है उतनी देर के लिए। तो इसलिए वो प्रेम उमड़ता है, लोग गाते हैं। पहले महाराज जी, मुझे याद है कि डेकोरेशन के नाम पे कोई एक पत्ती भी लगा दे तो महाराज उसको यूं फेंक देते थे निकाल के। अरे सत्संग करना है, ध्यान करना है, केवल इन बातों पे थोड़ी मन को अटकाना है। राधे
Thank you for joining Jagat Guru Kripalu Parishad podcast.